ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना आलोच्य कृति का मूल्यांकन इतिहास एवं संस्कृति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में करना चाहती है। वर्तमान की किसी भी गंभीर, जटिल एवं उलझनपूर्ण समस्या का कारण कभी कभी सुदूर अतीतवर्ती किसी महान ऐतिहासिक घटना में ढूंढा जा सकता है। इसलिए युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए हमें समूची ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अनुशीलन करना होगा। हिंदी में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की समीक्षाएं इसी कोटि की हैं। ऐतिहासिक आलोचना के अनुसार मानव समुदाय की चिंतनशीलता देश काल के अनुसार परिवर्तित होते हुए भी परंपरा से बधी होती है। इसी कारण निर्गुण संतों को समझने के लिए हमें नाथ योगियों एवं बौद्ध सिद्धों का भी अध्ययन करना पड़ता है। हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों को हमें अपभ्रंश साहित्य से संबद्ध करके देखना पड़ता है। समीक्षा की यह ऐतिहासिक पद्धति व्याख्यात्मक आलोचना का ही एक पूरक अंग है। इसका उपयोग आचार्य शुक्ल ने भी जायसी की आलोचना में किया था, किंतु इसका आदर्श रूप उनके बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनाओं हिंदी साहित्य की भूमिका कबीर एवं हिंदी साहित्य का आदिकाल में प्रस्फुटित हुआ। पंडित परशुराम चतुर्वेदी की उत्तर भारत की संत परंपरा तथा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की भूषण ग्रंथावली की भूमिका इसका अच्छा उदाहरण है। चतुर्वेदी जी ने वैज्ञानिक अन्वेषक की तटस्थता अधिक है, जबकि द्विवेदी जी तटस्थ नहीं रह पाते और उनकी संवेदनशीलता उभर आती है। इधर हिंदी के शोध प्रबंधों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के अध्ययन को महत्व देकर इस समीक्षा पद्धति की उपयोगिता स्वीकार की जा रही है। ऐतिहासिक आलोचना एक प्रकार से साहित्य की इतिहास दृष्टि को स्पष्ट करती है। इधर हिंदी में भी साहित्य के इतिहास दर्शन पर कार्य होने लगा है। इतिहास दर्शन ऐतिहासिक सांस्कृतिक समीक्षा के सिद्धांत पक्ष को पुष्ट करता है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा बदलती रही है, इस दृष्टि से ऐतिहासिक समीक्षा का स्वरूप भी बदलता रहा है। साहित्य सापेक्षिक दृष्टि से ही कालजयी होता है, उसकी अंतर्वस्तु और रूप दोनों ही देश कालबद्ध होते हैं। इस प्रकार युगबोध के संदर्भ में साहित्य का मूल्यांकन एक प्रकार से ऐतिहासिक समीक्षा की सीमा में ही आता है। किसी भी साहित्य को शाश्वत न मानकर उसके देश कालबद्धता को रेखांकित करने वाली समीक्षा ऐतिहासिक ही मानी जाएगी। शास्त्रीय समीक्षा। हम देख पाए हैं कि द्विवेदी युग में शास्त्रीय समीक्षा या सैद्धांतिक समीक्षा का विकास दो रूपों में हुआ था। कुछ आलोचकों ने तो रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में नवीन विवेचनापूर्ण लक्षण ग्रंथों की रचना की थी और कुछ ने संस्कृत और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का समन्वय करके नवीन सिद्धांत ग्रंथों का प्रणयन किया था। छायावाद युग में शास्त्रीय विवेचन कुछ रुक सा गया था। छायावाद उत्तर युग से लेकर अब तक इन दोनों परंपराओं का पुनः महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इधर नवीन लक्षण ग्रंथों की रचना न करके विद्वानों ने संस्कृत के मूल सिद्धांत ग्रंथों का हिंदी में भाष्य सहित प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत करने में अपूर्व उत्साह दिखाया है। हिंदी अनुसंधान परिषद दिल्ली ने काव्यादर्श, काव्यालंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवित, काव्य मीमांसा और चित्त विचार चर्चा, काव्य प्रकाश, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण आदि संस्कृत के सिद्धांत ग्रंथों का प्रामाणिक संस्करण हिंदी में अवतरित करके बड़ा भारी काम किया है। इसी प्रकार परिषद ने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथों अरस्तु के काव्यशास्त्र, लॉन्जाइनस के द सबलाइम तथा होरेस के आर्स पोएटिक का भी हिंदी में अनुवाद कराया है। इन ग्रंथों से हिंदी काव्यशास्त्र समृद्ध हुआ है। पाश्चात्य एवं भारतीय चिंतनों के समन्वित आधार पर सिद्धांत ग्रंथों की रचना भी कम नहीं हुई है। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942 ईस्वी लक्ष्मी नारायण सुधांशु, साहित्यशास्त्र 1955 ईस्वी राम कुमार वर्मा, काव्यशास्त्र 1963 ईस्वी भागीरथ मिश्र, समीक्षा शास्त्र 1954 ईस्वी सीताराम चतुर्वेदी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी, आलोचना का इतिहास तथा सिद्धांत 1952 ईस्वी SP खत्री आदि कृतियाँ पर्याप्त गंभीर और विश्वसनीय सामग्री दे सकी हैं। हिंदी साहित्य में पाश्चात्य काव्यशास्त्र का विवेचन भी अब थोड़ा बहुत होने लगा है। इस क्षेत्र में पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत 1952 ईस्वी लीलाधर गुप्त, रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 ईस्वी डॉक्टर देवराज उपाध्याय, पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव 1960 ईस्वी डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल जैसी कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। काव्यशास्त्री परिभाषा शब्दों के कोश और विश्वकोश भी निर्मित हुए हैं। राजेंद्र द्विवेदी का साहित्य शास्त्र का परिभाषिक शब्दकोश इस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हिंदी साहित्यकोश के रूप में सामने आया। यह एक सामूहिक प्रयास है और अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह सब कुछ होने पर भी काव्यशास्त्र सिद्धांतों का जैसा गंभीर तात्विक मर्मग्राही एवं संश्लिष्ट विवेचन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, इसका अभाव बना हुआ है। उपर्युक्त ग्रंथों में मात्र सामग्री उपस्थित की गई है, तत्व का विवेचन नहीं किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के बहुचर्चित ग्रंथ रस सिद्धांत में भी संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध समस्त सामग्री को क्रमबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से सजा दिया गया है। ग्रंथ का बड़ा भाग मौलिक आख्यान न होकर अनुशीलन परक है। नवीन चिंतन और विचार की दृष्टि से सबसे सशक्त अंतिम अध्याय रस सिद्धांत शक्ति और सीमा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत को मानवतावाद के दृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित मानकर उसके माध्यम से निरंतर विकासमान कला चेतना का मूल्यांकन संभव बनाया है। पिछले 25 वर्षों में इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य हुआ है। शास्त्रीय समीक्षा के महत्वपूर्ण ग्रंथों में राममूर्ति त्रिपाठी कृत औचित्य दर्शन, तारकनाथ बाली कृत रस सिद्धांत की दार्शनिक और नैतिक व्याख्या, भगीरथ मिश्र कृत काव्य मनीषा, राममूर्ति त्रिपाठी कृत लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, कुमार विमल कृत सौंदर्य शास्त्र के तत्व, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित भारतीय काव्य सिद्धांत, शंकर देव अवतरी कृत काव्यांग प्रक्रिया, भगीरथ दीक्षित कृत अभिनव साहित्य चिंतन, राममूर्ति त्रिपाठी कृत काव्य तत्व विमर्श, रवि प्रकाश कृत हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप, प्रेमकांत टंडन कृत साधारणीकरण और सौंदर्यानुभूति के प्रमुख सिद्धांत, देवेंद्रनाथ शर्मा कृत पाश्चात्य काव्य शास्त्र, विजेंद्रनाथ सिंह कृत भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत, राममूर्ति त्रिपाठी कृत भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज तथा भगीरथ मिश्र कृत पाश्चात्य काव्यशास्त्र उल्लेखनीय है। मार्क्सवादी समीक्षा के व्यापक प्रभाव के परिणाम स्वरूप अब मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का भी विवेचन होने लगा है। इस विषय पर शिव कुमार मिश्र कृत मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और कमला प्रसाद द्वारा संपादित मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र महत्वपूर्ण प्रयास है। उपर्युक्त कृतियों को सामने रखकर कहा जा सकता है कि अब हिंदी में काव्यशास्त्रीय चिंतन की परिधि विस्तृत हो गई है। अब हम भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का अलग अलग विवेचन करने के साथ ही दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने लगे। अन्य भारतीय भाषाओं के काव्यशास्त्रीय चिंतन के समकक्ष हिंदी के शास्त्रीय चिंतन के महत्व और मूल्य की परीक्षा भी कर रहे हैं। संस्कृत की काव्यशास्त्रीय मान्यताओं के आलोक में आधुनिक हिंदी काव्य के मूल्यांकन के भी कुछ प्रयास हुए हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित काव्यास्वाद की प्रक्रिया के साधारणीकरण और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन परंपरा में विकसित सौंदर्यानुभूति के सिद्धांतों का बारीकी से विवेचन भी किया जाने लगा है। यह सब होने पर भी अभी हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने कोई मौलिक स्थापना कर ली है। हम इतना ही कह सकते हैं, अब हमें मौलिक स्थापनाओं की कठिनाइयां समझ में आने लगी हैं और हम अपना दायित्व समझने लगे हैं। अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना। द्विवेदी युग में अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना का आरंभ हुआ था। विगत 60 वर्षों में इस आलोचना का अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसका प्रधान कारण यह है कि विश्वविद्यालयों में PhD और डिलीट की उपाधियों के लिए प्रस्तुत होने वाले प्रबंधों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई है। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय सन 1934 ईस्वी में स्वीकृत हुआ था। इसके बाद क्रमशः हिंदी काव्यशास्त्र का विकास डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, तुलसी दर्शन, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक काव्यधारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, सूरदास, हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका 1757 से 1857 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, चंद्रप्रदायी और उनका युग, रामकथा उत्पत्ति और विकास, अकबरी दरबार के हिंदी कवि, आचार्य केशवदास, हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव और विकास, ध्वनि संप्रदाय उसके सिद्धांत, अभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, हिंदी में महाकाव्य स्वरूप विकास, काव्य में रस, हिंदी को मराठी संतों की देन, सूर पूर्व ब्रज भाषा काव्य, अवध के प्रमुख हिंदी कवियों का अध्ययन, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय, आधुनिक हिंदी और मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत, तुलसी दर्शन मीमांसा आदि अनेक महत्वपूर्ण शोध कृतियां प्रकाशित हुई हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इन अनुसंधान प्रकृतियों से बहुत सा अंश तथ्यपरक होता है, जिसे आलोचना नहीं कहा जा सकता, किंतु यह उससे भी बड़ा सत्य है कि आलोचना दृष्टि के अभाव में अच्छा शोध प्रबंध नहीं लिखा जा सकता। कुछ भी हो, हिंदी के जो शोध प्रबंध प्रकाशित हुए हैं उनमें आलोचना के तत्व पर्याप्त मात्रा में लक्षित होते हैं। शोध का विद्यार्थी शोध सामग्री का अनुशीलन करते हुए तत्वों और मूल्यों का भी अन्वेषण करता है। इस प्रकार का अन्वेषण आलोचना दृष्टि की अपेक्षा रखता है। पिछले 25 वर्षों में संख्या और वैविध्य दोनों दृष्टियों से अनुसंधान परक आलोचना समृद्ध हुई है। विशेषतः दक्षिण की द्रविड़ परिवार की भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा आर्य परिवार की भाषाओं मराठी, गुजराती, बंगला आदि की प्राचीन और आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों से हिंदी की तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से पूरे भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का जो उद्घाटन हुआ है वह हिंदी के शोध यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। इस अवधि में हिंदी भाषा का अर्थ तात्विक विकास, वैष्णव साहित्य में रस परिकल्पना, हिंदी तथा बंगला काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी भक्ति साहित्य के संदर्भ में भक्ति आंदोलन का अध्ययन, हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, केशव का आचार्यत्व, जम्भोजी विष्णुई संप्रदाय और साहित्य, तमिल और हिंदी साहित्य के आधार पर वैष्णव भक्ति आंदोलन का अध्ययन, प्राचीन भारत में काव्य रूपों का विकास और पुराने हिंदी के काव्य रूप, मध्ययुगीन कवियों के काव्य सिद्धांत, हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार, निर्गुण कवियों का रामकाव्य, हिंदी सूफी काव्य का समग्र अनुशीलन, संत साहित्य का अभिव्यंजनापरक अध्ययन, आधुनिक हिंदी काव्य में मिथकीय कल्पना, हिंदी में अनुवादित मराठी साहित्य ग्रंथ, राजपूत चित्रकला शैलियां और रीतिकालीन काव्य, तेलुगु और हिंदी के उपन्यासों में चरित्र निर्माण में मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन, सरस्वती और राष्ट्रीय जागरण, मधुर भक्ति साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन हिंदी और तेलुगु, प्रेमचंद का जीवन आदि महत्वपूर्ण शोध प्रबंध स्वीकृत हुए हैं। 1980 से 1986 के बीच स्वीकृत शोध प्रबंधों की संख्या लगभग 3261 है। यह संख्या हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार की द्योतक है। जहां तक गुणात्मक उत्कर्ष का प्रश्न है, शोध परक आलोचना की स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। स्वीकृत शोध प्रबंधों में पृष्ठपेषण की प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्वचिंतन और नवीन व्याख्या का जो नितांत अभाव है, एक अच्छे शोध प्रबंध के प्रकाशित होते ही उसे आधार बनाकर कई शोध प्रबंध तैयार करा लिए जाते हैं। संभव है प्रवाह के स्थिर होने पर शोध स्तर में सुधार हो और अनुसंधान परक आलोचना हिंदी के गौरव के अनुकूल प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। छायावादी कवि कल्पना लोक में विचरण करता हुआ जीवन की यथार्थता से कुछ दूर चला गया था। वह स्वप्नलोक के मोहक सौंदर्य को देख ही रहा था कि जीवन की वास्तविकता ने उसे झकझोर कर चौंका दिया। वह वस्तु सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकता था। पंत और निराला जैसे समर्थ कवि सामाजिक यथार्थ के चित्रण की ओर उन्मुख हुए। सुमन, नरेंद्र शर्मा, अंचल आदि कवियों ने उत्तर छायावाद काल से ही नवीन प्रगतिशील काव्य की रचना आरंभ कर दी थी। इसके साथ ही आलोचना के क्षेत्र में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना का प्रचलन हुआ। प्रगतिवादी आलोचना का मुख्य आधार मार्क्सवादी जीवन दर्शन है। मार्क्सवादी जीवन दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। इनमें निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब वस्तु में सन्निहित परस्पर विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वस्तु का प्रस्तुत अपने में ही सन्निहित विरोधी तत्वों से द्वंद्व करता हुआ प्रत्यवस्थान में परिणित हो जाता है और आगे चलकर जब दोनों तत्वों में संतुलन हो जाता है तो वह साम्यावस्था की स्थिति में आ जाता है। किंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह पाती। विरोधी तत्व पूर्णतः उद्भूत होते हैं, द्वंद्व चलने लगता है और नवीन अव्यवस्था क्रम प्रारंभ हो जाता है। विकास की द्वंद्वात्मक प्रणाली स्वीकार करता हुआ मार्क्स वर्तमान समाज की व्याख्या करते हुए बताता है कि पूंजीवादी वर्ग प्रस्तुत अवस्थान है, सर्वहारा वर्ग प्रत्यवस्थान है। इन दोनों का द्वंद्व अनिवार्य है। द्वंद्व के पश्चात साम्यवाद के रूप में साम्यावस्थान की स्थिति का आना अवश्यंभावी है। मार्क्स के अनुसार वस्तु जगत ही चरम सत्य है, चेतना सत्ता तो जड़ जगत में भी क्षोभ उत्पन्न करने होने के कारण उद्भूत हुई है। विचार जगत वस्तुतः भौतिक जगत का ही मानव मस्तिष्क में पड़ा प्रतिबिंब है। इस प्रकार चेतन तत्व को जड़ तत्व का ही विकास मान लेने पर जगत से परे ईश्वर जैसी पृथक चेतना सत्ता की मान्यता के लिए स्थान ही न रहा। ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देने पर जगत की समस्त व्यवस्था के मूल में इतिहास मनुष्य के क्रियाकलाप को ही महत्व देना पड़ा। संसार में ऊंच नीच एवं अमीर गरीब का सारा प्रपंच मनुष्य द्वारा ही खड़ा किया गया है। यह ईश्वरीय न्याय का नहीं मानवीय स्वार्थ का परिणाम है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य की चेतना वस्तु जगत का नियमन नहीं करती, वरन वस्तु जगत ही मानव चेतना एवं विचारों के रूप में अंतरित होता है। मानव समाज के विकास पर विचार करते हुए मार्क्सवाद यह स्वीकार करता है कि आरंभ में एक प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था थी, जिसे आदिम साम्य व्यवस्था कहा जा सकता है। इस आदिम साम्यवाद की परिणति दास प्रथा की परिणति सामंतशाही और सामंतशाही की परिणति आधुनिक पूंजीवाद में हुई है। आज की समस्त दुर्व्यवस्था के मूल में यह पूंजीवादी जीवन दृष्टि ही कार्य कर रही है। चूंकि मानव चेतना का नियमन सामाजिक परिस्थितियां करती हैं और कला चेतना मानव चेतना का ही उदात्त रूप है, इसलिए प्रत्येक युग का कलाकार जाने अनजाने उस वर्ग विशेष का ही प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह पला होता है। इस प्रकार आज की पूंजीवादी व्यवस्था के समानांतर विकसित होने वाली रोमांटिक कला चेतना पूंजीवादी प्रवृत्ति का ही पोषण करती है। पूंजीवाद वस्तुतः व्यक्ति स्वातंत्र की आर्थिक परिणति है। रोमांटिक कला इसी व्यक्ति स्वातंत्र को सर्वोपरि महत्व देती है। उसे व्यक्ति स्वातंत्र की कलात्मक परिणति कहा जा सकता है। पूंजीवाद को मिटाने और साम्यवाद की स्थापना करने के लिए सर्वहारा वर्ग के स्वाभिमान को जागृत करना होगा। अतः आज के कवि और कलाकार का कर्तव्य है कि वह सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करे और ऐसी काव्य रचना करे जिससे यह वर्ग पूंजीवाद को मिटाने के लिए सन्नद्ध एवं सक्रिय हो सके। मार्क्सवादी समीक्षक जीवन और काव्य की उपयुक्त व्याख्या स्वीकार करता हुआ कवियों का मूल्यांकन करते समय यह देखता परखता चलता है कि कवि विशेष के काव्य में किस वर्ग विशेष की हित चिंतना निहित है। वह मानता है कि लोक मंगल की भावना प्राचीन साहित्य में भी है, किंतु वहां पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करके संतोष कर लिया गया है। अब पीड़ितों और दलितों के प्रति सहानुभूति दिखाने और उनकी व्यथा पर करुणा का भाव प्रकट करने से ही काम नहीं चलेगा। आवश्यकता उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की है। इसके लिए यदि साहित्यकार शोषक और शासकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति करता है या क्रोध प्रकट करता है तो वह जायज है। ऐसी रचना को मार्क्सवादी समीक्षक मानवतावादी ही मानता है। मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि कोई जड़ या स्थिर सैद्धांतिक रूढ़ ही नहीं है, इसका निरंतर विकास होता आया है। अब तो टेरी इंग्लटन जैसे आलोचक यह मानने लगे हैं कि मार्क्सवादी आलोचना का उद्देश्य साहित्यिक कृति की अधिक पूर्णता के साथ व्याख्या करना है, जिससे उसके रूप शैली और अर्थ के प्रति अधिक संवेदनशील सावधानी होती है। मार्क्सवादी आलोचना कृति की कलाबद्धता ही नहीं उसकी कलातीतता की भी व्याख्या करती है। मार्क्सवादी आलोचना की मौलिकता साहित्य की ऐतिहासिक समझ में नहीं बल्कि क्रांतिकारी समझ में है। मार्क्सवादी समीक्षक अब काव्य के ऐतिहासिक समझ में रूप पक्ष को भी महत्व देने लगे हैं। रूप के परिवर्तन का अर्थ है वस्तु में और पूरे ऐतिहासिक बोध एवं विश्व दृष्टि में परिवर्तन। भाव और विचार बिंबों प्रतीकों उपमान विधानों तथा अन्य भाषिक वक्रताओं के माध्यम से भी मूर्त होते हैं। इसलिए रूप के सौंदर्य और अंतर्वस्तु के साथ उसके जटिल संबंध का विश्लेषण आवश्यक है। इस प्रकार विगत वर्षों में मार्क्सवादी समीक्षा के क्षितिज का पर्याप्त विस्तार हुआ है और अब वह कृति विशेष में निहित विचारधारा का ही अनुसंधान नहीं करती, वरन कृति की संरचना का विश्लेषण करके उसके संपूर्ण सौंदर्य का उद्घाटन करती है। मार्क्सवादी बनाम समाजशास्त्री समीक्षा। सामान्यतः मार्क्सवादी और समाजशास्त्री समीक्षा को एक ही समझा जाता है, किंतु दोनों पूर्णतः एक नहीं है। समाजशास्त्री समीक्षा सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत साहित्य के विविध पक्षों का आख्यान सामाजिक प्रक्रिया के रूप में करती है। समाजशास्त्रियों की दृष्टि में साहित्य का स्वरूप संस्थात्मक है। जैसे अन्य सामाजिक संस्थाएं अपने सदस्यों को दिशा निर्देश करती हैं, उन्हें किन्हीं मूल्यों और आदर्शों के प्रति उन्मुख करती हैं, वैसे ही साहित्यकार भी अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों को किन्हीं आदर्शों और मूल्यों के प्रति सचेष्ट करता है। साहित्यकार भी व्यक्ति और समाज के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। समाज की अन्य संस्थाएं सीधे और स्पष्ट तरीके से अपनी बातें प्रेषित करती हैं, किंतु साहित्यकार बिंबों प्रतीकों मिथकों आदि के माध्यम से अपने भाव और विचार व्यक्त करता है। मार्क्सवादी समीक्षा भी साहित्यकार को एक सामाजिक प्राणी मानकर चलती है, किंतु वह कला और सामाजिक परिस्थितियों के अंतर संबंधों की व्याख्या मार्क्सवादी जीवन दर्शन के आधार पर करती है। डॉक्टर मनोजर पांडे ने साहित्य के समाजशास्त्र की वर्तमान प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए कहा है, इनवर्टेड कॉमा, आजकल साहित्य के समाजशास्त्र के विकास की दो धाराएं हैं। एक धारा में साहित्य में समाज का अभिव्यक्ति की खोज होती है, उसे हम मीमांसावादी धारा कह सकते हैं। दूसरी में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन होता है, वह अनुभववादी धारा है। मीमांसावादी धारा के अंतर्गत मार्क्सवादी, आलोचनात्मक, समाजशास्त्री और संरचनावादी दृष्टियां सक्रिय हैं, तो अनुभववादी पद्धति में पुरानी विधेयवादी दृष्टि के साथ साथ संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टियां सक्रिय दिखाई देती हैं। ये नोटेड कामन। उपर्युक्त कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मार्क्सवादी समीक्षा समाजशास्त्रीय समीक्षा की एक धारा मात्र है। डॉक्टर नगेंद्र ने पर्याप्त छानबीन के बाद साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन की निम्नलिखित परिभाषा की है, इन्वर्टेड कॉमा, कर्ता, कृति और पाठक के त्रिकोण रूप साहित्य के सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण समाजशास्त्री अध्ययन है, इन्वर्टेड कॉमा। वस्तुतः समाजशास्त्रीय समीक्षा स्वयं विकास के अनेक सोपानों से होकर आगे बढ़ी है। यही स्थिति मार्क्सवादी समीक्षा की भी है। यदि पूरे समाजशास्त्रीय चिंतन को ऐतिहासिक भौतिकवाद की सीमा में नहीं लाया जा सकता, तो समूची समाजशास्त्रीय समीक्षा को भी मार्क्सवादी समीक्षा की परिधि में नहीं लाया जा सकता। यह अवश्य है कि जैसे समाज के अनुशीलन का सही सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद को माना जा सकता है, वैसे ही मार्क्सवादी समीक्षा को भी वास्तविक समाजशास्त्रीय समीक्षा कहा जा सकता है। हिंदी में समाजशास्त्रीय समीक्षा संबंधी विचार विवेचन आलोचना पत्रिका के माध्यम से आरंभ हुआ। अब तो इस विषय में संबंधित कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हो गई हैं। श्रीराम मल्होत्रा कृत साहित्य का समाजशास्त्र, डॉक्टर नगेंद्र कृत साहित्य का समाजशास्त्र, डॉक्टर बच्चन सिंह कृत साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, डॉक्टर निर्मला जैन द्वारा संपादित साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन तथा मनोजर पांडे कृत साहित्य के समाजशास्त्र भूमिका इस विषय की उल्लेखनीय कृतियां हैं। अभी समाजशास्त्रीय दृष्टि से साहित्यिक रचनाओं का व्यवस्थित मूल्यांकन नहीं के बराबर हुआ है। मार्क्सवादी समीक्षा की एक दीर्घ परंपरा अवश्य कायम हो गई है। नया भावबोध, नई समीक्षा। छायावादी काव्य चेतना की उच्छविस भावाभिव्यक्ति, इंद्रधनुषी कल्पना विधान एवं वैयक्तिक जीवन दृष्टि की प्रतिक्रिया में जीवन यथार्थ की अभिव्यक्ति पर बल देने वाले मार्क्सवादी जीवन दर्शन से प्रभावित प्रगतिवादी काव्य चेतना भी हिंदी के काव्य संसार को अधिक प्रभावित नहीं कर सकी। कारण यह था कि उसमें राजनीतिक विचारों के अभिव्यक्ति का आग्रह अधिक और कवित्व कम था। 1942-43 तक आते आते इसका आकर्षण कम होने लगा। संभवतः इसका एक कारण यह भी था कि प्रगतिवादी काव्य को मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध या उससे सहानुभूति रखने वाले रचनाकारों से एकाकार करके देखा जा सकता है, और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियां प्रगतिवादी काव्य चेतना के प्रति हिंदी साहित्य जगत के रुख को प्रभावित करती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। यही नहीं, उसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में संप्रभुता संपन्न राज्य की स्थापना के बारे में मुस्लिम लीग के लाहौर के प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। उस समय तक यह भी प्रकट हो चुका था कि प्रगतिवाद की सीमा में बंधकर चलने से काव्य की प्रकृति भूमि पर्याप्त संकुचित हो जा रही है। इस प्रकार छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की सीमाओं से मुक्त होने पर अभिव्यक्ति के नए मार्ग का अनुसंधान आवश्यक था। संभवतः इसीलिए 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन के समय उसमें संग्रहित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया। काव्य यात्रा के क्रम में नई राह के अन्वेषण का प्रश्न क्यों उठा? निश्चय ही उस समय तक युग संदर्भ बदल चुका था। परंपरागत भाषा, छंद, अलंकार विधान, ध्वनि नियोजना, प्रतीक एवं बिंब नवीन युग के संश्लिष्ट जटिल संवेदना के साथ नहीं दे पा रहे थे। वस्तुतः द्वितीय महायुद्ध के ने विश्व मानव को नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य कर दिया था। पहले महायुद्ध के बाद से ही काल यास्पर्स जैसे विचारक यह अनुभव करने लगे थे कि आधुनिक कल्याणकारी शासन के विशाल मशीनी संगठन में मनुष्य एक मामले पूर्जा बन चुका है, और वह निजी तत्व, अंतरात्मा और आध्यात्मिक धुरी सब कुछ खोता जा रहा है। काल यास्पर्स अस्तित्ववादी विचारक था। यद्यपि सन 1942-43 ईस्वी तक हिंदी कवियों पर अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु विज्ञान के बढ़ते प्रभाव और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों के केंद्रीभूत होने, महानगरों के युग ने तथा यांत्रिक सभ्यता के प्रभाव वृद्धि के कारण मनुष्य के पदार्थीकरण होने की प्रक्रिया से जो नए भावबोध की सृष्टि हो रही थी उसकी जटिलता का अनुभव हिंदी कवियों को होने लगा था। तारसप्तक के प्रमुख कवि अज्ञेय ने अपने तत्कालीन वक्तव्य में जीवन की जटिलता, स्थिति परिवर्तन की असाधारण तीव्र गति, कवि की उलझी हुई संवेदना, विचार संयोजनों की विषमता, पाठकों की जीवन परिपाटियों में वैषम्य और इन सबके चलते साधारणीकरण और कम्युनिकेशन की समस्या का प्रश्न उठाया था। दूसरे महत्वपूर्ण कवि मुक्तबोध ने स्वीकार किया था कि 1938-1942 तक के 5 साल उनके मानसिक संघर्ष और वर्गसोनीय व्यक्तिवाद के वर्ष थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मानसिक द्वंद्व उनके व्यक्तित्व में बद्धमूल है। उन्होंने मैं अनुभव किया था कि तत्कालीन जीवन वैविध्यमय उलझन से भरा और रंग बिरंगा था। इसी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए वे काव्य प्रयोग कर रहे थे। तीसरे बड़े कवि गिरजा कुमार माथुर तो तारसप्तक को आधुनिक बोध की काव्यधारा के प्रथम समवेत अभिव्यक्ति मानते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि मंजीर के प्रकाशन काल में ही आधुनिक बोध के अनुरूप नागरीय संवेदना, इतिहास की सांस्कृतिक दृष्टि तथा भाषा, छंद, बिंब और ध्वनि विधान के नवीन रूपाकार और प्रस्तावना अपनी रचनाओं में वे कर चुके थे। उनका प्रस्ताव है कि आधुनिकता का प्रक्रिया का प्रथम उन्मेष 1940 से 1952 तक मानना चाहिए और द्वितीय चरण 1953 से अब तक। वे कहते हैं, मेरी दृष्टि में प्रथम उन्मेष के प्रधान तत्व थे परिवेश के प्रति गहरी जागरूकता, सामाजिक यथार्थ की चेतना, इतिहास का प्रथम बार तीव्र बोध, भाव जगत में सूक्ष्म पद्धतियों प्रतिक्रियाओं की पहचान, युद्धगत संक्रांति की मानवीय निवेदना संवेदना, अंतर्राष्ट्रीय उन्मुखता, नवरोमान और परिवर्तित मूल्यों की टकराहट, दूसरे चरण में निकटतम सत्यों की संवेदना, संक्रांति की विडंबनाओं का एहसास, व्यंग और विपर्यय, मूल्यगत विकृति, आत्महीनता, जीवन की विसंगतियों की अभिव्यक्ति, वैज्ञानिकता का उदय, अमिष अनुभूतियों का आस्वाद प्रमुख स्वर है। तारसप्तक द्वितीय संस्करण। माथुर साहब का प्रस्ताव मान्य है या अमान्य, हमें इस पर विचार नहीं करना है। यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 1942-43 तक आते आते हिंदी के कवि तत्कालीन जीवन की जटिलता से उत्पन्न नए भावबोध का एहसास करने लगे थे और तदनुकूल अपनी कविता के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ कर चुके थे। उनके इस प्रयत्न का आरंभिक चरण प्रयोग काल और द्वितीय चरण नई कविता का काल कहा जाता है। नई कविता को सामान्यतः आधुनिक भावबोध की कविता माना जाता है। वस्तुतः 19वीं शती में यूरोप में जो अभूतपूर्व तकनीकी विकास हुआ उसकी दो परिणतियाँ हुई। एक ओर तो मनुष्य का यंत्रीकरण हुआ और वह अपनी अस्मिता खोकर पदार्थ बन गया। दूसरी ओर पूंजी का केंद्रीकरण हुआ और अनवरत शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई जिससे संपन्न और विपन्न के बीच खाई बढ़ती गई। इसी क्षति में दो महान विचारक सामने आए, सोरेन किर्केगार्ड और कार्ल मार्क्स। किर्केगार्ड ने मानव अस्मिता का प्रश्न उठाया और अस्तित्ववाद का प्रवक्ता बना। कार्ल मार्क्स ने पूरी समाज व्यवस्था को केंद्र में रखकर सोचा और ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रवर्तक बना। 20वीं शती में यूरोप के दो दो महायुद्धों की ज्वाला में जलना पड़ा। इन युद्धों में मानव ने अपने को नितांत नगण्य पाया। उसने अपने को अकेला, अजनबी, असहाय, संतरस्त और टूटा हुआ अनुभव किया। उसने नैतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ती देखी, आस्था उसे वंचना प्रतीत हुई। उसने नगरों को शमशान और संस्कृति के प्रतीकों को ध्वस्त होते हुए देखा। उसे मनुष्य पशु से भी नीच और हिंसक दिखाई पड़ा। उसने अनुभव किया कि मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, वह मृत्यु के लिए अभिशप्त है। इस परिस्थिति में अस्तित्ववादी दर्शन अधिक प्रासंगिक हो उठा। कार्ल यास्पर्स, मार्टिन हाइडेगर और जॉन पॉल सात्रे ने नए संदर्भ में इसकी व्याख्या की। प्रयोग काल के बाद नई कविता के दौर में इस दर्शन से हिंदी कवि प्रभावित हुए और उनकी रचनाओं में आधुनिक भावबोध का प्रतिफलन साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। आधुनिक भावबोध का एक सकारात्मक पक्ष भी है। माना कि आज का मनुष्य यांत्रिक सभ्यता के दबाव में अपनी पहचान खो चुका है, वह निराश और उदास है। उसे अपनी लघुता और व्यर्थता का एहसास है। वह आज के विसंगतिपूर्ण जीवन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं देख पा रहा है। तो क्या उसका पुरुषार्थ गहन उदासी में डूब जाने और जीवन को निरुद्देश्य मान लेने तक ही सीमित है? मुक्तिबोध इसे नकारते हैं। वह कहते हैं, मैं अपने खुद की जिंदगी और दोस्तों की जिंदगी के तजुर्बे से बता सकता हूँ कि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत है। आधुनिक भावबोध के अंतर्गत यह भी है कि मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में हम और भी अधिक दत्तचित्त हों तथा हम वर्तमान परिस्थितियों को सुधारें, नैतिक ह्रास को थामें, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति की उपाय योजना करें। मुक्तिबोध रचनावली पृष्ठ संख्या 192। मानवता के भविष्य की स्थापना विकृत स्वार्थवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, सामाजिक बंधनों में प्रेम और त्याग की भावना, अहंकार की उग्रता के विरोध जैसी बुनियादी बातों को एक व्यापक जीवन दर्शन में समाहित करके काव्य में उस जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति भी की जा सकती है और इस प्रकार आधुनिक भावबोध को गहन निराशा और निरुद्देश्यता के अंधकार से निकालकर एक सकारात्मक जीवन प्रक्रिया का रूप दिया जा सकता है। किंतु मुक्तिबोध की यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक जीवन क्षेत्र में अनुभव किए जाने वाले तड़पते छटपटाते हुए भाव संवेदनों को नया कवि काव्य स्तर पर इसलिए नहीं उठा पाता कि इन संवेदनाओं के अनुकूल तदानुसारी कलात्मक उपादान और संवेदनशील कलात्मक भाषा का विकास उसने नहीं किया है। तात्पर्य यह है कि प्रयोगकाल से लेकर नई कविता की प्रतिष्ठा तक के दौर में नया कवि संवेदना के स्तर पर अनुभूत नए जटिल भावबोध की अभिव्यक्ति के प्रयत्न में नए कलात्मक उपादानों और नई संवेदनशील कलात्मक भाषा को विकसित करता रहा और तब मिलाकर नई कविता जटिल और दीक्षागम्य हो गई। सन 1959 में श्री शिक्षायतन कॉलेज कलकत्ता द्वारा आधुनिक साहित्य बोध पर आयोजित एक परिसंवाद में नामोर सिंह ने कहा था, जटिलता के प्रति आधुनिक साहित्यकार की यह आत्मा सजगता की आधुनिक साहित्य को पूर्ववर्ती साहित्य से अलग करती है और संभवतः उसे अपेक्षाकृत अधिक जटिल भी बना देती है। आधुनिक साहित्य बोध पृष्ठ संख्या 42। इस नए जटिल भावबोध और तदनुकूल जटिल कलात्मक उपादानों से युक्त संश्लिष्ट काव्य भाषा वाली नई कविता के समानांतर नई समीक्षा का विकास हुआ। पश्चिम में यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। वहां काव्य भाषा को ऐसा रूप देने का प्रयत्न किया गया था कि वह विचार काव्य के स्थान पर वस्तु काव्य को प्रतिष्ठित कर सके। बिंबवाद, प्रतीकवाद और धनवाद जैसे आंदोलन इसी प्रयत्न के परिणाम थे। आलोचना के क्षेत्र में टीएस इलियट ने जब अपना प्रसिद्ध निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसने एक प्रकार से काव्यस्वाद की प्रक्रिया को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाने की ही कोशिश की। उसने कहा, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्जिटेंशन ऑफ पर्सनालिटी। इट इज इन दिस depersonalization that art may be said to approach the condition of science. Literary criticism, पृष्ठ संख्या 375। स्पष्ट है कि उसके सामने कला को विज्ञान की स्थिति में लाने की चुनौती थी। विचार पूर्वक देखा जाए तो नई समीक्षा इसी चुनौती को स्वीकार करने की परिणति है। हिंदी में जब जटिल अनुभूतियों वाली नई कविता के विवेचन और मूल्यांकन का प्रश्न उठाया तो छायावादी संस्कारों से युक्त सौष्ठवादी आचार्य व्यर्थ समीक्षा व्यर्थ सिद्ध हुई। परंपरागत शास्त्रीय प्रतिमानों में रस और प्रासंगिक प्रमाणिक हो गया। ध्वनि और वक्रोक्ति की उपयोगिता एक सीमा तक स्वीकार हुई, किंतु नए संदर्भ में इनके पुनराख्यान की आवश्यकता का अनुभव किया गया। मार्क्सवादी समीक्षक के लिए रचना की पूर्ण स्वायत्तता स्वीकार करना संभव नहीं था, इसलिए आरंभिक दौर में इसके प्रति उनका रुख नकारात्मक बना रहा। ऐसी स्थिति में कविता के नए प्रतिमानों की खोज में आंग्ल अमेरिकी साहित्य में प्रतिष्ठित नई समीक्षा से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण करना स्वाभाविक था। अतः हिंदी की नई समीक्षा पर विचार करने के पूर्व आंग्लो अमेरिकी नई समीक्षा का परिचय अप्रासंगिक न होगा। सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर स्पिन गॉर्न ने 1911 ईस्वी में नई समीक्षा शीर्षक एक शोध पत्र लिखा। यह शोध पत्र 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस शोध पत्र में स्पिन गॉर्ग ने क्लासिकल, रोमांटिक, समाजशास्त्री, जीवन मूलक आदि समीक्षा पद्धतियों को अस्वीकार करते हुए यह स्थापित किया था कि समीक्षा वस्तुतः एक प्रकार की वैयक्तिक प्रतिक्रिया है जो जीवन अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है। आगे चलकर नए समीक्षकों ने स्पिन बर्ग का दिया हुआ यह नाम स्वीकार कर लिया। निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि किस तिथि को नई समीक्षा का जन्म हुआ, किंतु यह निश्चित है कि टी एस इलियट की द सीक्रेट वुड, मिडल्टन मरे की द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल और आई ए रिचर्ड्स की पीपुल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसी कृतियों के माध्यम से इसके आधार तत्वों का विकास हुआ। कहना ना होगा कि रिचर्ड्स और इलियट दोनों की इस बात पर बल देते हैं कि समीक्षा का ध्यान मुख्य रूप से कविता पर ही केंद्रित होना चाहिए। दोनों ही इतर बातों से हटकर कविता के विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन पर बल देते थे। आगे चलकर नई समीक्षकों ने जब रचना को पूर्णतः स्वायत्त भाषिक संरचना माना तो उन्होंने भी इसके भाषिक विश्लेषण पर ही बल दिया। संभवतः इसीलिए रिचर्ड्स को अमेरिका में नई समीक्षा का जनक स्वीकार किया जाता है। नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले जॉन क्रू रेनसम ने कहा कि रिचर्ड से ही नई समीक्षा की शुरुआत हुई। विलियम एम्पसन ने तो अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यह कहकर उसे समर्पित की कि इसमें भी जो भी उद्भावनाएं हैं उसका स्रोत वही है। सन 1941 में जॉन क्रू रेनसम की नई आलोचना नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। यही से नई समीक्षा को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। रेनसम के अतिरिक्त एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरेन, आर पी ब्लैकमर, आइवर विंटर और क्लिंस ब्रुक्स नए समीक्षकों में प्रमुख माने जाते हैं। इन सभी समीक्षकों ने कविता पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसके भाषिक विशेषण पर बल दिया और उसकी अलग अलग विशेषताओं को लक्षित किया। रेनसम के अनुसार कविता के रूप रचना में शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेष होता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है, अर्थ विधान विचारात्मक। इन दोनों का तनाव ही काव्य भाषा को अपेक्षित भंगिमा प्रदान करता है। उसने लक्षित किया था कि इलियट की प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड में इसका अभाव है, जिसमें कविता का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म पृष्ठ संख्या 105। टेट के अनुसार कविता का अस्तित्व जिस संतुलन पर स्थित होता है वह उसके बहिरंग संतुलन और अंतरंग के बीच घटित होता है। टेट ने यहाँ संतुलन शब्द का प्रयोग बहिरंग संतुलन और अंतरंग संतुलन को प्रकट करने वाला के मध्य पूर्ण सामंजस्य के अर्थ में किया है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पेज नंबर 437। रॉबर्ट पेन वारन की ख्याति आलोचक से अधिक कवि और उपन्यासकार के रूप में, फिर भी उसकी समीक्षा में संयम और विश्लेषण की प्रवृत्ति प्रधान है। उसने काव्य भाषा में व्यंग, विरोधाभास और प्रतीक पर विशेष बल दिया है। उसने कहा, इनोडेट कामा, कवि अपनी दृष्टि को आयरनी की अग्नि में अर्थ विधान के नाटकीय व्यापार में समर्पित करके अपने उद्देश्य की सिद्धि करता है, और ऐसा वह इस आशा में करता है कि अग्नि में पढ़कर वह शुद्ध हो जाएगी। 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म पेज नंबर 107। ब्लैकमर ने सबसे अधिक महत्व जेस्टर को दिया। उसके अनुसार सांकेतिकता ही काव्य भाषा का प्रधान गुण है, क्योंकि इसमें गति होती है। जहां विधा की भाषा समाप्त हो जाती है वहां सांकेतिक भाषा कार्य करती है। आइवर विंटर का दृष्टिकोण अन्य नए समीक्षकों से भिन्न है। वह स्वभाव से नैतिक था। नए समीक्षकों में उसकी गणना इसलिए की जाती है कि वह भी साहित्य कृतियों का स्वतंत्र सत्ता मानता है और समीक्षा के विश्लेषण पद्धति का प्रयोग करता है। उसके अनुसार कवि अपनी भाषा में अभिधार्थ और लक्षार्थ का गूढ़ संश्लेष उपस्थित करता है। टेट की भांति वह भी कविता की अवयविक एकता पर बल देता है और उसे शब्दों के अंतर संबंधों का ऐसा गूढ़ संश्लेषण मानता है जो अंतर्वस्तु की तर्कपूर्ण योजना, स्वरों की सुयोजित गति, लय, सानिध्य, विपर्य आदि पर आधारित होता है। क्लिंथ ब्रुक्स विसंगति को काव्य भाषा का प्रधान गुण मानता है। उसके अनुसार विसंगति ही किसी कविता के संरचनात्मक ढांचे का मूल आधार है। वह कहता है, कविता की प्राविधिक व्यंजनात्मक और अप्रत्यक्ष होती है। वह बिंबों, रूपों, प्रतीकों, चरित्रों और स्थितियों के माध्यम से नाटकीय रूप में अर्थ प्रकाशन करती है। नई समीक्षा के अन्य उन्नायक विलियम एम्पसन ने अनेकार्थकता को काव्य भाषा का प्राण तत्व स्वीकार किया। उसने अनेकार्थकता के 7 प्रकारों का उल्लेख करके उनका संबंध कविता में व्यक्त जटिल मनस्थितियों और उनके विविध स्तरों से जोड़ा। इस प्रकार उसने रिचर्ड्स द्वारा प्रारंभ किए गए अर्थतात्विक अध्ययन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नई समीक्षा के प्रतिष्ठापरक और उन्नायक काव्य भाषा के तात्विक विवेचन में एकमत नहीं है, किंतु नई समीक्षा की मूल प्रतिज्ञा काव्य स्वतः वस्तु है को लेकर उनमें पूर्ण सहमति है। नई समीक्षा जिन आधारभूत बातों पर बल देती है वे निम्नलिखित है। 1, काव्य भाषिक संरचना मात्र है, इसलिए भाषा के संजनात्मक तत्वों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य धर्म है। 2, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक और मनोविश्लेषणवादी समीक्षाएं अनावश्यक एवं अप्रासंगिक हैं। 3, संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न पर विचार तथा मूल्यांकन का प्रयत्न आवश्यक नहीं है। 4, रचना की आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विवेचन विश्लेषण के लिए उसका गहन पाठ नितांत आवश्यक है। नई समीक्षा की सीमाओं का बोध स्वयं अमेरिकी समीक्षकों को बहुत शीघ्र हो गया था। 1952 ईस्वी तक आते आते शिकागो स्कूल के आलोचकों ने आर एम क्रेन के नेतृत्व में नए समीक्षकों का विरोध किया। इन्होंने प्रमाणित किया कि नई समीक्षा के औजारों से छोटी कविताओं का विश्लेषण भले कर लिया जाए किंतु प्रबंध काव्यों, नाटकों और कथाकृतियों की समीक्षा के लिए वे बहुत उपयोगी नहीं है। शिकागो स्कूल के समीक्षकों की सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि यदि वस्तुपरक विश्लेषण द्वारा विज्ञान के समक्ष मानविकी की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त उत्साह में आलोचना गणित और विज्ञान बन जाती है तो इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है। आलोचना मानविकी का ही एक विषय है, वैज्ञानिक बनने के प्रयास में इसे इसकी मूल प्रकृति से अलग कर देना उचित नहीं है। नई समीक्षा की भांति कृति को साहित्य मानने वाली एक अन्य समीक्षा पद्धति शैली विज्ञान भी है। शैली विज्ञान भाषिक विश्लेषण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें भाषा के अभिव्यंजक उपादानों ध्वनि विज्ञान, छंदशास्त्र, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द शास्त्र का समावेश किया गया है। अपने विकसित रूप में शैली विज्ञान एक और अपने सिद्धांत तंत्र की दृष्टि से भाषा विज्ञान, संरचनावाद और संकेतार्थ विज्ञान से जुड़कर अपने को सम्यक रूप में स्वरूपित कर पा रहा है तो दूसरी ओर प्रकार की दृष्टि से साहित्य विश्लेषण और साहित्यालोचन की विशिष्ट प्रणाली के रूप में भी उपस्थित हो रहा है। नई समीक्षा और शैली विज्ञान में अंतर यह है कि शैली विज्ञान भाषा विज्ञान का पूरा पूरा आधार ग्रहण करके विश्लेषण में प्रवृत्त होता है जबकि नई समीक्षा ऐसा नहीं करती। उसमें विसंगति, विडंबना, व्यंग, अनेकार्थकता, संकेतार्थ, संकुलन आदि जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है वे भाषा विज्ञान के औजार नहीं हैं। उनका संबंध काव्य न्याय से है। कुछ भी हो, हिंदी में शैली वैज्ञानिक आलोचना को विशेष महत्व नहीं दिया गया। प्रख्यात शैली वैज्ञानिक समीक्षक रविंद्र श्रीवास्तव द्वारा केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविता इस अनागत का क्या करें कि जो शैली वैज्ञानिक आलोचना की गई है उसकी परीक्षा करने के बाद बच्चन सिंह कहते हैं, स्पष्ट है कि विवरणात्मक शैली वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर वाक्यों, उपवाक्यों, संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध आदि के माध्यम से कविता की जो परीक्षा की गई है वह उसकी स्व परीक्षा बन जाती है। उसमें जिस व्याकरण की सहायता ली गई है वह कविता के छोटे छोटे खंडों में काट तो देता है पर उसे संश्लेषित नहीं कर पाता। इस विवच्छेदन व्यापार से मूल्यांकन का संबंध निशेष हो जाता है। यह टिप्पणी शैली वैज्ञानिक सीमाओं समीक्षा की सीमाओं को स्पष्ट कर देती है। शैली वैज्ञानिक आलोचक रविंद्रनाथ श्रीवास्तव इसका प्रतिवाद करते हैं। वह कहते हैं, काव्यकृति को साहित्य मानने का अर्थ है विश्लेषण और परीक्षा की आधारशिला तथा मूल केंद्रक के रूप में स्वयं कृति की स्वीकृति। अतः आलोचक के लिए यह जरूरी है कि वह पहले इसी आधार बिंदु से आगे बढ़े, पर दृष्टि की समग्रता की मांग को भी उसे नहीं भूलना चाहिए कि इस आधार बिंदु के ऊपर उठकर उसे साहित्यिक और सांस्कृतिक समग्रता के पृष्ठभूमि में रखकर कृति को एक संश्लिष्ट घटक के रूप में देखना है। वस्तुतः प्रश्न सिद्धांत का नहीं व्यवहार का है और व्यवहार के धरातल पर हिंदी में शैली विज्ञान आलोचना भी अपनी मूल्यवत्ता प्रमाणित नहीं कर सकी। शैली विज्ञान के साथ ही संरचनावाद का उल्लेख प्रासंगिक है। संरचनावाद के अनुसार साहित्य शाब्दिक संरचना है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु कई घटक तत्वों के संश्लेष से निर्मित होती है। ये घटक एक ओर परस्पर संबद्ध होते हैं, दूसरी ओर पूर्ण निर्मिति के साथ उनका संतुलित संश्लेषण होता है। साहित्य शाब्दिक संश्लेष है। संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत जिनेवा और पेरिस में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर फर्दिनांद डी सस्यूर द्वारा प्रतिपादित भाषा सिद्धांत है। सस्यूर के अनुसार भाषा के दो रूप हैं, एक ललांग दूसरा लपरोल। ललांग को अंतर्वैयक्तिक भाषा व्यवस्था कह सकते हैं, लपरोल को व्यक्ति विशेष की भाषा कहा जा सकता है। लॉन्ग अंतर संबंधी प्रतीकों की ऐसी सामान्य व्यवस्था है जो पूरे समाज में वैचारिक संप्रेषण संभव बनाती है। यह व्यवस्था भाषा समुदाय के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। परोल का क्षेत्र सीमित है, व्यक्ति भेद से उसका रूप बदल जाता है। क का परोल ख से भिन्न होता है। परोल वैज्ञानिक होने के साथ स्वच्छंद और परिवर्तनशील भी है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। लांग के नियमों से परोल नियंत्रित होता रहता है। परोल के रूप में लॉन्ग खंडशः मूर्त होता है। परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान ही संरचना है। प्रसिद्ध नृतत्ववेत्ता लेवी स्ट्रॉस ने इसी सिद्धांत के मिथकों के अध्ययन पर लागू किया है। उसके अनुसार मूल मिथक लॉन्ग है तो उसके अलग अलग रूप परोल। मिथक के अलग अलग रूपों के अध्ययन के बल पर मूल मिथक से सिद्धांत स्पष्ट किए जा सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इस सिद्धांत को लोलावार्थ ने प्रश्रय दिया। संरचनावाद के अनुसार हमें साहित्य कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना के रूप में देखना चाहिए। यह संपूर्ण संरचना पर्त दर पर्त इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उपसंरचनाओं, ध्वनि, छंद, बिंब, पदविन्यास आदि के गुंप के रूप में देखा जा सकता है। कृति विशेष की जटिल संरचना के विश्लेषण से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर अंततः साहित्य मात्र की रचना के मूल सिद्धांतों का अन्वेषण संरचनावाद का लक्ष्य है। इसके साथ ही संरचनावादी उन मानसिक क्रियाओं का अन्वेषण भी करना चाहते हैं जो कृति विशेष को पढ़ते समय उसे समझने के प्रयत्नों में पाठकों द्वारा निष्पादित होती है। यह होने पर भी संरचनावाद के लिए रचना केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना है, इसलिए रचनाकार के वैचारिक भावात्मक अभिप्राय का विवेचन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं आता। ऐसी स्थिति में सब मिलाकर संरचनावाद का झुकाव रूपवाद की ओर ही होना स्वाभाविक है। हिंदी में अभी सिद्धांत की सैद्धांतिक चर्चा मात्र आरंभ हुई है। कैसी रचना का संरचनावादी सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करके उसके निहितार्थ को स्पष्ट किया गया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। हिंदी में नई समीक्षा ठीक उसी रूप में नहीं आई जिस रूप में अमेरिका नई समीक्षाओं समीक्षकों ने इसे प्रतिष्ठित किया था। हिंदी के नए समीक्षकों ने काव्य के संदर्भ में भाषा के महत्व को स्वीकार किया, उसकी सृजनात्मक विशेषताओं को लक्षित करने की चेष्टा की, कवि के अनुभव संसार के विस्तार और भाषा संसार के प्रसार की समानांतरता का निरूपण किया, काव्य भाषा के संदर्भ में बिंब वैविध्य, तनाव, विसंगति और विडंबना के महत्व को स्पष्ट करने की कोशिश की, शब्द प्रयोग एवं ध्वनि संयोजन से उत्पन्न चमत्कार को सराहा, काव्य के रूप पक्ष और संवेद तत्व की संश्लिष्टता को स्वीकार किया, रचनाओं के गहन पाठ को महत्व दिया, किंतु कविता को पूर्णतः ऐतिहासिक रचना संदर्भ से काट कर देखने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षकों ने भी रचना की स्वायत्तता को सम्मान देते हुए उसकी सापेक्षिक स्वायत्तता का प्रतिपादन किया और रूप तत्व के विवेचन के महत्व को स्वीकारा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि डॉ. रामविलास शर्मा जैसे प्रखर मार्क्सवादी समीक्षक ने भी निराला की समीक्षा करते हुए उनके काव्य शिल्प का सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने निराला की कविताओं को उदाहरित करते हुए उनकी रचना पद्धति का विश्लेषण किया है, स्थापत्य की सराहना की है, स्थापत्य के नियामक तत्वों, विवेक और स्वप्न दृष्टि को लक्षित किया है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को ग्रहण करने वाली वृत्तियों के आधार पर उनकी कविताओं के मूर्त विधान की व्याख्या की है तथा उनकी प्रतीक योजना, संश्लिष्ट बिंब रचना, अनुप्रास प्रेम, ध्वनि प्रवाह, स्वर साधना, शब्द योजना, छंद विधान, अलंकरण, अर्थ चमत्कार, गीत रचना कौशल आदि की विस्तृत समीक्षा की है। न्यायस्मरणीय है कि डॉ. शर्मा मूलतः रचनाकार की विचारधारा की परख करने वाले समीक्षक रहे हैं। निराला के शिल्प का विवेचन उन्होंने निराला की काव्य भाषा के गहन और गंभीर अध्ययन के आधार पर ही किया है। काव्य भाषा के गहन पाठ की यह प्रेरणा उन्हें नई समीक्षा के व्यापक प्रभाव से प्राप्त हुई हो तो आश्चर्य नहीं।